होती है। जिसके पास अकल होती है वो सब प्रशासन कर सकता है। इसलिए हे महाराज, ये किसी भी प्रकार से बाली के भेजे हुए नहीं है और ये किसी भी प्रकार से हमारे शत्रु नहीं है। सुग्रीव ने इन बातों को सुना तो उसके मन में थोड़ी ठंडक आई, लेकिन फिर भी उसने कहा, हनुमान सुनो, यदि ये बाली के द्वारा भेजे हुए नहीं है तो तलवार लेकर क्यों आए? ये धनुष बाण लेकर के यहाँ क्यों आए? ये दूसरों को भयभीत करने के लिए क्यों आए? देखो इनकी लंबी लंबी भुजा है, मोटी मोटी आंखें हैं, इससे मैं संदेह होता है कि बाली ने इनको ताकतवर समझा है, बुद्धिमान समझा है, कोई देवताओं में तपस्वी है उनको भेजा है, और भेज करके राजा लोग बहुत बड़ा काम करते हैं। राजानो बहु मित्राश्च, राजाओं के बहुत जान पहचान रहती है, बहुत लोगों को मित्र बनाकर रहते हैं, रखते हैं, और सबके ऊपर विश्वास की बात करते हैं और किसी पर भी विश्वास नहीं करते। राजा लोग अपने गुप्तचरों के लिए भी अलग से गुप्तचर रखते हैं। किसी को कहते हैं कि मुझे तेरा बहुत बड़ा विश्वास है, लेकिन उसके ऊपर भी वो विश्वास नहीं करते, बल्कि उसके विश्वास की परीक्षा के लिए और दूसरा उसके पीछे लगा देते हैं। कृत्येषु बाली मेधावी राजानो बहुदर्शिन है। देखो ये बाली बड़ा मेधावी है। बाली ने यहाँ पर कई प्रकार के प्राकृत नरों के समान काम किया है, इसलिए बाली की बात के ऊपर विश्वास नहीं होता। देखो एक काम करो हनुमान, मेरे कहने से तुम यहाँ से जाओ और यहाँ से जाकर तुम इनकी चेष्टा से मालूम करो, और चेष्टा से मालूम करके ये हमको दिखाओ कि ये कौन है। देखो तुम बात करो ना, तब तुम्हारा मुख मेरी तरफ पर्वत की तरफ रहो, मैं हम यहाँ बैठे बैठे देखेंगे, और उनका मुख तेरी तरफ रहे और तू इधर उनकी तरफ मुख किया हुआ हमको इशारा करके सब बता देना। यदि वास्तव में इनका भाव अच्छा है तो वैसा इशारा कर देना, और यदि इनका भाव अच्छा नहीं है तो हमको वैसा दूसरा इशारा कर देना, हम चुपचाप यहाँ से भग जाएंगे। व्यभाषित इरवा रूप इरवा विज्ञेया दुष्टता नहीं हो, बातचीत से पता चलेगा, इनके रूप रंग से पता चलेगा, इनके इशारों से पता चलेगा, इनके बोलने के लहजे से पता चलेगा कि इनका भीतर का भाव क्या है। हनुमान तुम हमें बड़े बुद्धिमान हो, तुम्हें जैसा याद आए हनुमान वैसा तुम जरूर करना। इस समय हनुमान तुम्हारे हाथ में बहुत बड़ा काम है। हनुमान देखो आज बहुत बड़ा अनर्थ भी हो सकता है और बहुत बड़ा अर्थ भी हम प्राप्त कर सकते हैं। जाओ हनुमान, तुम्हारी बुद्धि की परीक्षा यही है और अभी ही है। हनुमान जी ने सुग्रीव जी को नमस्कार किया, प्रणाम किया, सब साथियों को उन्हें अभिवादन किया, और वहां से हनुमान जी महाराज वहां ऋषिमुख पर्वत से रवाना हुए। और राम रामेति मधुरम मधुराक्षरम आरुह्य कविता शाखाम वंदे वाल्मीकि कोकिलम। भगवान श्री राम पंपा सरोवर पर पहुंच गए हैं। भगवान के दर्शन करके प्राणी मात्र को शांति मिलती है, परंतु वृक्षराज के पुत्र सुग्रीव को, बाली के छोटे भाई सुग्रीव को राम जी के दर्शन करके भय पैदा हो रहा है। असल में ये भय राम जी के दर्शन से नहीं हो रहा है, ये बाली के साथ बैर विरोध है। वो इतना ज्यादा बढ़ा हुआ है कि भगवान के रूप में वो बैर दिखता है। जिसके मन में भगवान के प्रति भक्ति होती है उसके मन में स्वाभाविक ही भगवान को देखकर भक्ति ही जागृत होती है। हनुमान जी ने सुग्रीव को समझाया कि मेरे विचार से जिन दोनों राजकुमारों को देखकर आप भयभीत होते हो, ये बाली के भेजे हुए नहीं है। सुग्रीव ने कहा कि जाकर तुम परीक्षा कर लो, हम तुम्हारी बात मान लेंगे। और इस ढंग से परीक्षा करते हुए इशारा कर देना हम लोगों को, ताकि हम दूर बैठे तुम्हारी बातचीत से अनुमान लगा लेवे कि तुम्हारी बात सच्ची है या हमारा सोचना सच्चा है। हनुमान जी महाराज सुग्रीव से विदा होकर ऋष्यमुख पर्वत की तलैटी पर उस स्थान पर पहुंच गए जहां भगवान श्री राम और लक्ष्मण सुग्रीव के साथ मित्रता करने के लिए कबंद के कहने से यहां आए थे। हनुमान जी ने सोचा कि यदि मैं बंदर के रूप में जाऊंगा तो संभवतः इन दोनों राजकुमारों की बात मैं पहचान नहीं पाऊंगा। यदि मैं अपने आप को छिपाकर वहां उपस्थित करूंगा तो इन लोगों को कई बात का विश्वास हो जाएगा कि सुग्रीव के यहां बड़े बुद्धिमान पुरुष, बहुत बुद्धिमान लोग रहते हैं। यदि ये हमारे से कोई भेद लेने आएंगे तो मैं इनका भेद ले लूंगा, और इनकी तरफ से कोई भेद लेना होगा तो भी भेद लूंगा, लेकिन ये सब बानर शरीर से नहीं होगा। हनुमान जी ने एक भिक्षुक का रूप बनाया, बटुक रूप बनाया। तुलसीदास जी महाराज ने तो ब्राह्मण रूप के लिए कहा है, लेकिन यहां वाल्मीकि जी महाराज ने भिक्षुक का रूप बताया है। उन्होंने उस समय अपना भिक्षुक का रूप बनाया और जहां श्री राम और लक्ष्मण विराजमान थे वहां वो पहुंच गए और बड़े विनीत भाव से दोनों को हाथ जोड़कर उन्होंने मस्तक नवाया और विधिवत आदर के साथ श्रेष्ठ बानर हनुमान जी ने सत्य और पराक्रम में श्रेष्ठ राम और लक्ष्मण को संबोधित करते हुए कहा कि हे राजर्षि के चिन्हों से युक्त महातपस्वियों, आप कौन देश में रहकर उसे पवित्र करते हैं? आप श्रेष्ठ पुरुषों में भी श्रेष्ठ मालूम देते हैं। यहां इस निर्जन देश में आपके पधारने का कारण क्या है? आपके यहां पधारने से पशुओं के मन में बड़ा भय हो गया है। वनचारी प्राणियों के लिए आश्चर्य का विषय है कि आप ऐसे पवित्र स्थल पर तलवार धनुष बाण लेकर क्यों आए हैं? आप इन एक एक वृक्षों को बड़े गौर से देख रहे हैं, इसका कारण क्या है? आपकी चाल ढाल बोल व्यवहार धैर्यवान पुरुषों की तरह मालूम दे रही है। मृगचर्म पहने हुए आप कौन हो? आपके दर्शन से अनेक प्रकार के संशय पैदा हो रहे हैं। आपकी चाल सिंह के समान है। आपके पास धनुष इंद्रधनुष के समान है। आप दोनों रूप संपन्न हो, आप बहुत बड़े सिंह के समान मालूम देते हो, आपके हाथ हाथी की सूंड के समान लंबी मालूम देती है, आप महेंद्र पर्वत के समान धैर्य में स्थित हो, आप तो किसी देश के राजा होने लायक हो, आपके स्वरूप में तो राजपना टपकता है, इस देश में क्यों आए हैं? आपके नेत्र कमल के समान बड़े सुंदर हैं, आप स्वाभाविक जटामंडल धारण करने वाले नहीं हो, ये जटा वगैरह तो बाद में बनाई हुई मालूम देती है, आप कोई स्वर्ग लोक से यहां आए हो, आप दोनों एक जैसे मालूम देते हो, एक गौरवर्ण एक श्याम वर्ण इतना ही भेद है, बाकी आप में कोई भेद मालूम नहीं दे रहा है। क्या इस पृथ्वी के ऊपर सूर्य और चंद्रमा आ गए? देवता के रूप में विशाल वक्षस्थल वाले सिंह के समान स्कंद वाले आप कौन हो? आपके शरीरों पर तो दिव्य आभूषण रहने चाहिए, आप तो विंध्याचल से लेकर सागर तक की पृथ्वी के मालिक होने चाहिए। आश्चर्य होता है, शरीर राजाओं सा, शस्त्र वीरों से, पोशाक तपस्वियों सी, ये अद्भुत और अनेक विधाओं का मेल कैसे हो रहा है? आपके तुनीर पूरे के पूरे बाण से भरे हुए हैं, आपके बाण सर्पों के समान बड़े तीखे और वेगधारी हैं, आप महाप्रमाण हो, आप अक्षोभ्य हो, आपके पास ये एक एक तलवारें ये बिल में रहने वाले सांप के समान बड़े तीखे हैं। मैं इतनी देर से आपके सामने बोल रहा हूं, आप दोनों मुझे बहुत गौर से देख रहे हैं, कुछ नहीं बोलते हैं, यह भी आपकी एक विचित्र बात है। हमारे वानर श्रेष्ठ सुग्रीव बड़े धर्मात्मा हैं, वे अपने भाई से दुखी होकर ऋष्यमूक पर्वत पर रह रहे हैं, मैं उनका एक सेवक हूं। सुग्रीव ने मुझे आपके विषय में जानने के लिए भेजा है, उनका चित्त आपको देखकर भ्रमित हुआ है। मेरा नाम हनुमान है, मैं भिक्षुक के रूप में आया हूं, लेकिन मैं वानर हूं। सुग्रीव आपके साथ मित्रता चाहते हैं, मैं उसी सुग्रीव का सचिव हूं, मैं पवन का पुत्र हूं। सुग्रीव का प्रिय कार्य करने के लिए, आपकी जानकारी करने के लिए मैं भिक्षुक के रूप में आया था, मैं चाहे जैसा रूप बना सकता हूं, चाहे जहां जा सकता हूं, अभी ऋष्यमुख पर्वत से आपके पास आया हूं, आपके विषय में जानने के लिए आया हूं। इतना कहकर हनुमान जी चुप हो गए, और उसके बाद हनुमान जी कुछ नहीं बोले। हनुमान जी दोनों को देख रहे हैं, दोनों की मुद्रा देखते हैं, दोनों के इशारे देखते हैं, दोनों के नेत्र देखते हैं। राम ने लक्ष्मण से कहा कि लक्ष्मण, ये बानर राज सुग्रीव के परम मंत्री हनुमान है और अपने लोगों की जानकारी के लिए अपने पास आए हैं। सुग्रीव के साथ मित्रता करने की जो तुम्हारी बात थी लक्ष्मण, तुम भी कुछ बात कहो। इसकी वाणी मुझे बहुत प्रिय लगी है, इसका बोलना मुझे बहुत अच्छा लगा है। देखो, ऋग्वेद का अध्ययन के बिना, यजुर्वेद का अध्ययन के बिना, सामवेद का अध्ययन के बिना ऐसी प्रिय वाणी नहीं बोल सकता। इसने व्याकरण का पूरा अध्ययन किया है, इसके बोलने में कहीं पर भी कोई त्रुटि नहीं हुई है। बातें बहुत सी कही है लेकिन एक बात भी कहीं पर इसकी बात निरर्थक नहीं हुई है। इसके मुख पर, इसके ललाट पर, इसके नेत्रों पर, इसके भुवों पर मुझे कोई दोष मालूम नहीं दिया है। बड़े संक्षेप में, बिना संदेह के, न बहुत धीरे धीरे न बहुत जल्दी जल्दी, ऐसे वाक्य कहा है कि शब्द बड़े गंभीर निकले हैं और मध्यम आवाज में कही है। संस्कृत भी इसकी बड़ी सरल और सरस है, इसकी वाणी में बड़ा रस भरा हुआ है। बड़ी विचित्र वाणी से इसने अपनी सब बात कही है। ऐसा कौन जानकार पुरुष होगा जो इसकी वाणी से प्रसन्न नहीं होगा? ऐसा दूत जिस राजा के पास हो, वो दूत, वो राजा ऐसे दूत से अपने बिगड़े हुए सारे काम बना सकता है। यदि ऐसे दूत राजा के पास न हो तो राजा के सुधरे हुए सारे काम बिगड़ सकते हैं। हमें तो ऐसे दूत बहुत अच्छे लगते हैं लक्ष्मण। बताओ अपने विषय में अपना परिचय वानर हनुमान से कहो। लक्ष्मण जी ने राम जी से थोड़े से आगे आकर के हनुमान के सामने खड़े होकर बड़ी आत्मीयता के साथ कहा, हे वानर हनुमान, महात्मा सुग्रीव के विषय में हमने बहुत सी बातें सुनी थी। हनुमान, हम सुग्रीव को ढूंढने के लिए ही इस मार्ग में यहां आए हैं। यदि सुग्रीव के साथ हमारा मेल मिलाप हो तो किस विधि से हो, ये हमें बताइए। हनुमान जी बहुत प्रसन्न हुए और अपने मन को समाहित करके हनुमान जी के मन में आया कि हम इनके साथ सुग्रीव की अवश्य मित्रता कराएं। हनुमान जी ने कहा, लक्ष्मण जी, ये तो आप सोच लीजिए कि आपकी सुग्रीव के साथ मित्रता हो चुकी है। जब मैं दूत बनकर आपके पास आया हूं तो उनकी ओर से मैं ही कहता हूं कि आपकी मित्रता हो चुकी है। भावियो राज्यागमस्तस्य सुग्रीवस्य महात्मनः यदयम् कृत्यवान् प्राप्तः कृत्यम् चेदत् उपागतम्। हनुमान जी ने कहा कि महात्मा सुग्रीव को अब राज्य मिल गया, ऐसा हमको निस्संदेह ज्ञान हो रहा है, क्योंकि यदि आपका मिलना नहीं होता तो हमारे मन में ऐसी बात पैदा नहीं हो सकती थी। आपके दर्शन से हमको ऐसा लगता है कि सुग्रीव का राज्य मिल गया। हनुमान जी महाराज फिर कहने लगे कि आप लोग इस पंपा सरोवर तक कैसे आए हैं? इसके चारों ओर के वनों को आप नहीं जानते हैं, ये तो बहुत राक्षसों का केंद्र है। नाना प्रकार के पक्षी और पशु या भय को पैदा करने वाले हैं। आप भी सुग्रीव के साथ मित्रता क्यों चाहते हैं? किस देश से आए हैं? कुछ तो आप बताएंगे तो हमें मालूम देगा। राम जी के कहने से लक्ष्मण जी ने बड़े आदर के साथ कहा कि हे हनुमान, अयोध्या के एक धर्मवत्सल राजा दशरथ हुए हैं। उन्होंने चारों वर्णों को अपने अयोध्या में बड़े प्रेम के साथ रखा है। उन्होंने किसी के साथ संसार में द्वेष नहीं किया। वो किसी के साथ द्वेष नहीं रखते थे और उनके साथ भी किसी ने द्वेष नहीं रखा। वो पितामह ब्रह्मा के समान सब प्रजा का पालन करने वाले थे। उन महाराज के कोई पुत्र नहीं था। उन्होंने अग्निस्टोम आदि यज्ञ के द्वारा चार पुत्र प्राप्त किए थे, जिनमें सबसे बड़े ये राम हैं। सब लोगों को आनंदित करने के कारण से इनका नाम राम रहा है। सब प्राणियों को आश्रय देने वाले हैं। पिता के आज्ञा पालक पुत्र हैं। दशरथ जी के सबसे बड़े लड़का हैं। राजा के योग्य हैं। सारी राज्य संपदाओं को भोगने वाले हैं। परंतु किसी कारणवश ये राज्य से भ्रष्ट होकर वन में आए थे। इनके साथ इनकी पतिव्रता स्त्री सीता थी। परंतु किसी राक्षस ने उस सीता का हरण कर लिया। मैं इनका छोटा भाई लक्ष्मण हूं। राम तो सदा ही सुख में रहने योग्य थे, सब प्राणियों के हितेशी। वे आज ऐश्वर्य विहीन होकर के वनवास में भटक रहे हैं। ऐसे में सीता का हरण और हो गया, ये हमारे लिए बड़ी कष्ट की बात है। सीता को खोजते खोजते हम लोग कबंद राक्षस के चंगुल में फंस गए थे। कबंद ने हमको दिव्य शरीर से, दिव्य ज्ञान से बताया कि आप सुग्रीव से मित्रता कर लीजिए। मैं और राम दोनों के दोनों अब सुग्रीव के शरण में आए हैं। एष दत्त्वा च वित्तानि प्राप्य चानुत्तमं यशः लोकनाथ है पुरा भूत्वा सुग्रीवं नाथम इच्छति। ये राम पहले बहुत सा धन दक्षिणा में देकर, बहुत बड़ा यश प्राप्त करके भी, संपूर्ण लोकों के स्वामी होकर के भी आज सुग्रीव को अपना स्वामी बनाना चाहते हैं। ये धर्मवत्सल राम सबको शरण में रखने वाले, सबके परम शरण्य, वे सुग्रीव के शरण में आ रहे हैं। ये मेरे बड़े भाई राम संपूर्ण लोकों की आत्मा है। वे सुग्रीव के शरण में आए हैं, जिनकी कृपा से अयोध्या की प्रजा बड़ी आनंदित रहती है। वे वानरेंद्र सुग्रीव के साथ आज कृपा की चाहना रखकर उनके पास आए हैं। जिन महाराज दशरथ ने अनेक गुणों से युक्त होकर सब राजाओं से सम्मान प्राप्त किया था, उन्हीं के सबसे बड़े पुत्र राम आज वानरेंद्र सुग्रीव के शरण में आकर अपने को कृतकृत्य करना चाहते हैं। श्री राम इस समय में शोकाभिभूत है। अपने शोक से त्राण पाने के लिए ये सुग्रीव के साथ मित्रता चाहते हैं। आज सुग्रीव के अलावा इनको कोई ऐसा मित्र दिखाई नहीं दे रहा है। ये बात सुनकर के हनुमान जी महाराज जो बहुत बोलने में बड़े निष्णात हैं, उत्तर दिया, हे लक्ष्मण जी, आपकी ऐसी परम पवित्र बुद्धि है, आप क्रोध को जीत लिया, आप जितेंद्रिय हैं, बड़े भाग्यशाली हैं कि सुग्रीव आपके दर्शन करेगा। सुग्रीव के राज्य को बाली ने नष्ट कर दिया है, सुग्रीव की स्त्री को बाली ने ले लिया है, सुग्रीव बड़ा भयभीत है, वो आप लोगों की क्या सहायता कर सकता है, फिर भी जो उसके पास शक्ति है उसके अनुसार सुग्रीव आपकी जरूर सहायता करेंगे। सुग्रीव सूर्य पुत्र है, सुग्रीव हम लोगों के साथ सीता की जरूर खोज करेंगे। एक बात है, यदि आप लोग सुग्रीव के पास चले तो बहुत अच्छा रहेगा। राम जी ने कहा, हाँ क्यों नहीं, सुग्रीव जी से मिलने के तो हम आए ही हैं बानर, चलो अब। तो उस समय में लक्ष्मण जी ने राम जी से कहा कि महाराज, ये बानर जिस प्रकार से प्रसन्न होकर बोलता है उससे ऐसा लगता है कि अब अपना काम हो चुका। हे राघव, सीता की खोज हमको नहीं करनी है, हमको तो केवल सुग्रीव की खोज करनी है। सुग्रीव की खोज करने के बाद सीता की खोज अपने आप सुग्रीव के द्वारा हो जाएगी। सीता की खोज करने से आज जितना हमको सुख मिलता उससे बड़ा सुख हमको सुग्रीव के खोज से मिल गया है, कार्य हो चुका है। शोक को दूर कीजिए भैया। हनुमान के मुख की ओर देखिए, हनुमान के नेत्रों में विजयोल्लास है, हनुमान का मुख एकदम प्रसन्न है, हनुमान कभी झूठ नहीं बोलता है, हनुमान का भाव बिल्कुल सत्य है। अपने को सुग्रीव जी के पास जाना चाहिए। राम जी महाराज प्रसन्न हो गए, वाह लक्ष्मण, हमारा काम सुग्रीव को खोजने का था, बिल्कुल आगे सीता के खोज का काम अपना नहीं रहा। राम और लक्ष्मण बड़े प्रसन्न हुए। उस समय में राम जी ने कहा, आओ बानर आओ, हम तुमसे बड़े प्रेम से मिलना चाहते हैं। हनुमान जी महाराज ने वो भिक्षुक का रूप हटाया, बानर रूप में सामने प्रकट होकर उन्होंने राम जी के चरणों में प्रणाम किया। राम जी ने उनको अपने छाती से लगाया और उसके बाद हनुमान जी ने कहा कि महाराज आओ, इस विशाल पर्वत के ऊपर शिखर भाग में अपने मैं आपको ले चलता हूं। आप ले चलोगे हनुमान? हाँ महाराज, आप इस कंधे पर विराजिए और इस कंधे पर लक्ष्मण जी बैठेंगे। लक्ष्मण, हनुमान की पीठ पर चढ़ना है, हो सारे संसार को धारण करने वाले लक्ष्मण, तुम, तुम्हारे फण के ऊपर रहने वाला ये संसार और उसको धारण करने वाला हनुमान, चढ़ो इसकी पीठ पर, मैं भी चढ़ता हूं। दोनों पीठ पर चढ़े और हनुमान जी महाराज यूं बड़े होते होते बड़े आनंद के साथ सुग्रीव के पास ले आए। सुग्रीव के पास नहीं लाए, ऋषिमुख पर्वत पर जहां सुग्रीव बैठते थे वहां ले जाकर राम जी को स्थापित कर दिया। और सुग्रीव थोड़ा दूसरी जगह मलय पर्वत पर था, ऋषिमुख पर्वत की एक पर ऋषिमुख पर्वत का शिखर था, शिखर भाग वो मलय पर्वत, वहां सुग्रीव यहां दुबका हुआ सब बैठा था। तो वहां ये हनुमान जी महाराज पहुंचे, सुग्रीव खड़े हुए, बोलो हनुमान कि आपने देखा कि देख लिया, मैं समझ गया कि कोई श्रेष्ठ पुरुष है, तभी तुम अपनी पीठ पर बैठा कर उनको लाए हो। चलो आपकी और उनकी मैं मित्रता करा देता हूं। ये कौन है ये बात आप इनसे पूछेंगे, इनके मुख से सुनेंगे, वही ज्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि आप राजा हो, राजा का और सोचने का तरीका होता है, हम लोग आपके सेवक हैं, हमारा सोचने का तरीका अलग है। पर मैं आपको इतना विश्वास दिलाता हूं कि इनके द्वारा आपका बिगड़ा हुआ काम सुधर जाएगा और आपके द्वारा इनका बिगड़ा हुआ काम सुधर जाएगा। चलो सुग्रीव को लेकर हनुमान जी महाराज राम जी के पास आए और वानर